ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ರಾಮ ರಾಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Vrindavan Bihari, Radha Vrindavan Bihari. Radha Vrindavan Bihari Radhe Jaya Radha Madan Mohan Lalita Devi Radha Madan Mohan Lalita Devi Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Gurudev.
Hari Naam Sankirtan Yajna Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Samaveda Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Thank you. Shlok Kramanka. स्कंद पांच अध्याय दह श्लोक क्रमांक 23 बोर्ड पे लिखा है मैं पढ़ता हूं आपको पीछे ये करना है शास्ता भी गुप्ता नृपति प्रजाना यकिं करो वैन पिनष्टि पिष्ठम स्वधर्म आराधनम अच्युतस्य यदि हमानो विजहत्य गोघम शास्त्राभिगुप्ता नृपति प्रजाना यकिं करो वैनपि नष्टिपिष्टम् स्वधर्म आराधनम अच्युतस्य यदि हमानो विजहत्य गोघम शास्त्राभिगोप्ता नृपति प्रजाना यकिं करो वैनपि नष्टिपिष्टम् स्वधर्म आराधनम अच्युतस्य यदि हमानो विजहत्य गोघम शस्त्राभिगोप्ता नृपति प्रजा किं करो वै न पिनश्चर्मराधनमचिहमानो विजहत् शस्त्राभिगुप्ता नृपति प्रजानां य किं करो वै न पिनश्ति पिष्ट स्वधर्माराधनमाचित यदि हमानो विजहत्य गग शस्त्राभिगुप्ता नृपति प्रजानां यकि किंकरो वै नपि नष्टि पिष्टम् स्वधर्माराधनमाच्युतस्य यदि हमानो विजहत्य गोगम शस्ताभिगोप्ता नृपति प्रजानां यकिंकरो वै नपि नष्टि पिष्टम् स्वधर्माराधन अच्युतस्य यदि हमानो विजहत्य गोगम अनुवाद हे महाशय, आपको महाशय आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के बीच में संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी है, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना होता है। उसको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा है कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्वित को चर्वन करना या पिसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्य के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्य में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुँचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। तात्पर्य, महाराज रघुगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क अत्यंत प्रभावोत्पादक है। श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु 124 में कहते हैं कि तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत, जैसे भी हो सके मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में लग जाना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है, किंतु विस्मृति के कारण वह माया का शाश्वत दास बन गया है। जब तक वह माया की सेवा में लगा रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को कृष्ण भक्ति में निरंतर रखना है। इससे वे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश एवं पाप कर्मों से मुक्त हो सकेंगे। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 4.10 में इस प्रकार की गई है, वीतराग भय क्रोध, भौतिक कार्यों से विरक्त होने पर हमें भय तथा क्रोध से छुटकारा मिलेगा। तपस्या से मनुष्य शुद्ध होकर परम धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। राजा का कर्तव्य यह है कि अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वे कृष्ण चेतनायुक्त हो सके। यह सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। दुर्भाग्यवश राजा या राष्ट्रपति जनता को ईश्वर की सेवा की जगह इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु यह किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। राजा रघुगण ने अपनी पालकी ढाने के लिए जटभरत को लगाया था, जो राजा के लिए एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति ही था। किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में पालकी उठाने को वाला कहार बनता है तो यह निश्चित रूप से लाभप्रद है। नास्तिक सभ्यता में यदि कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को किसी प्रकार से भक्ति या कृष्ण भावना अमृत जताने के प्रति उन्मुख कर सके तो वह नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञान अतिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच प्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्प तरुभ्यश कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है रविवारी भागवतम कक्षा में। तो ये आज का जो श्लोक है जड़ भरत तथा राजा रोहगन के बीच में जो वार्ता चल रही है तो उसके बारे में है। तो इधर जो प्रभुपाद जो तात्पर्य में भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक है उसको उद्धृत कर रहे हैं। श्लोक 124 है भक्ति रसामृत सिंधु का। उसमें बताया गया है कि एनक एनक प्रकारे न मन कृष्ण पदारविंदयो। तो हमें किसी भी प्रकार से क्यों न हो हमारा जो मन है भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जैसे इधर राजा है रघुगन, रघुगन एक राजा है और वो उन्होंने क्या करना चाहिए कि जो भी प्रजा है उनकी खुद अच्छे भक्त बनना चाहिए और अपने आचरण से शिक्षा से तो सभी प्रजा को कृष्ण भक्ति की ओर ले जाना चाहिए। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण आता है। तो पांचों पांडव भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। तो पूरा प्रजा भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है तो वो कर सकता है क्योंकि राजा उसके लिए दृष्टांत है। तो भगवद गीता में भी बताया गया है कि यदेद आचरति श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसे बाकी सब लोग करते हैं। तो राजा प्रजा के लिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है ना। तो इधर दूसरा जो श्लोक प्रभुपाद ने उद्धृत किया है वह भगवद्गीता 4.10 वीतराग भय क्रोध। ये जो श्लोक है तो उसमें बताया गया है कि वीत मतलब मुक्त। किससे मुक्त? हमें राग से मुक्त होना चाहिए। और राग भय और क्रोध इससे व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है? जैसे हम भक्ति की साधना करते हैं नित्य भागवतम की कक्षा में हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में और सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम ये जो विकार है इसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पहला विकार क्या है, राग। तो राग किसे कहते हैं कि हमारे जी इंद्रियों के जो विषय है, पांच विषय, जैसे कि हमारा कान है तो कान का विषय क्या है, सुनना, और आंखों का विषय क्या है, देखना। तो जो कान के प्रति जो अच्छा संगीत सुनने की जो हमारी आसक्ति होती है तो उसको बोलते हैं राग। इंद्रियों के जो विषय है ना, उसके प्रति जो आसक्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, राग। और हमारे अंदर क्योंकि हम भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं तो राग तो हमारे अंदर रहता ही है। और जैसे कि एक नाना होता है सिक्का, उसके दो बाजू होता है ना, तो उसी तरह जब किसी के अंदर राग होता है तो द्वेष भी होता है। कोई व्यक्ति हमारे इंद्रिय तृप्ति में अगर सहायक करता है या कोई वस्तु हमारी इंद्रिय तृप्ति में सहायक होती है तो वो उसके प्रति हमारा राग बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है ना। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधक है तो हमारे अंदर उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष आता है। जैसे 1.11 भगवद गीता में दुर्योधन बोलता है, सभी जब युद्ध चालू होने वाला है तो दुर्योधन क्या बोलता है, सभी जो बड़े बड़े योद्धा है महाभारत के, मतलब दुर्योधन के साइड के, तो उनको बोलता है कि सभी लोग क्या करो, आप पितामह भीष्म को सहाय करो। ऊपर से ये क्या लगता है कि वो पितामह भीष्म के प्रति उसका प्रेम है ऐसा लगता है, लेकिन ये प्रेम नहीं है, क्योंकि ये राग है। क्योंकि वो चाहता है कि युद्ध में विजय प्राप्त हो, और जैसे विजय प्राप्त होगी तो क्या होगा, उसका इंद्रिय तृप्ति होगा, है ना, और फिर पांडवों के प्रति उसके हृदय में द्वेष है ना। जैसे एक भक्त है ऋषिकानंद करके, तो श्री श्यामानंद जो श्यामानंद जो है तो उनके शिष्य है ये ऋषिकानंद। उनका चरित्र में हम देखते हैं कि एक बार वो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद लेने को बैठे थे, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद, तो उसी समय उनके गुरु श्री श्यामानंद प्रभु का पत्र आया उनको कि जिस स्थिति में हो ऐसे उठ के आना। अभी सामने इतना प्रसाद अच्छा रखा है और गुरु का क्या है, पत्र आया है कि उठो। तो यद्यपि वो जो भोजन था स्वादिष्ट तो उनके इंद्रिय तृप्ति में सहायक था, है ना, फिर भी उन्होंने क्या किया, उठ गए और अपने गुरु के पास त्वरित चले गए। तो त्वरित जाना गुरु के निकट तो उनके इंद्रिय तृप्ति में बाधक था ना, फिर भी वो गए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो मतलब वो क्या है, राग और द्वेष से मुक्त थे, है ना। तो जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो राग और भय से मुक्त होते हैं। तो फिर उसके बाद आता है राग के बाद क्या आता है, भय। तो हमें भविष्य की चिंता होती है ना, इस जीवन के बाद में नहीं तो भविष्य में, हमें भविष्य की चिंता होती है, बहुत सारी चिंता रहती है, तो हमें फिर भय प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं बहुत जगह पे कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है, जो अपनी पहचान इस शरीर के साथ करता है ना भौतिक जगत में, तो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। तो भौतिक जगत में अनेक प्रकार के भय रहते हैं व्यक्ति को, जैसे कोई किसी के पास बहुत संपत्ति है ना, तो उसको किस बात का भय रहता है, कहीं ये संपत्ति मेरे से चली न जाए, इस बात का भय रहता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत शक्तिशाली है, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसको भय रहता है कि कहीं मेरी ताकत चली न जाए, और उम्र बढ़ने के बाद तो शक्ति चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पे है चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री संतरी, तो वो उनको भय रहता है कि कहीं मेरा पद ना चला जाए, है ना। तो अगर कोई फिल्म की हीरोइन है, बहुत सुंदर है, तो उसको भय रहता है कि कहीं मेरी जगह कोई और ना ले, कहीं मेरा बाल सफ़ेद ना हो जाए, है ना। तो एक ना एक दिन तो बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं ना, तो वो सुंदरता भी नष्ट हो जाती है। तो अनेक प्रकार के जो भय है भौतिक जगत में, व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। और सबसे बड़ा भय तो क्या है, मृत्यु का है। तो एक न दिन तो मृत्यु आ ही जाती है। तो जो देहात्म बुद्धि में जो व्यक्ति है वो बहुत भयभीत रहता है मृत्यु से। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो राग द्वेष से भी मुक्त होता है और भय से भी मुक्त होता है। जैसे कथा आती है शास्त्रों में, तो सुधन्वा एक राजपुत्र है जो हंसध्वज करके एक राजा है, तो उनका बेटा है वो। और युधिष्ठिर महाराज महाभारत में अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, और अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ते हैं ना, तो अगर कोई घोड़े को पकड़ता है उसके साथ उसको क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है और उसको हराना पड़ता है। तो अर्जुन घोड़े की रक्षा कर रहे थे, और जैसे ही घोड़ा ये चंपानगरी नाम का राज्य था उधर गया, तो हंसध्वज राजा जो था ना घोड़े को पकड़ लिया उसको। अभी घोड़े को पकड़ लिया इसका मतलब क्या है, अर्जुन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो बेटे को आज्ञा दी, जाओ युद्ध करो। तो ये तो सुधन्वा भी महान भक्त था भगवान श्री कृष्ण का, तो उनका इच्छा था कि अर्जुन के साथ युद्ध करके अपना पराक्रम दिखा के तो उनके बाण से अपना मृत्यु हो जाए, है ना। तो ऐसा उनका इच्छा था खुद का, सुधन्वा का। तो जो भक्त होते हैं, कहने का तात्पर्य बताना यह है कि वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। तो जैसे इन दोनों का युद्ध हुआ, सुधन्वा ने बहुत पराक्रम दिखाया अर्जुन को, और अर्जुन ने जैसे ही एक तेजस्वी बाण छोड़ा, तो जो बाण जो है ना, जो बाण से धकधकती आग निकल रही थी, सब डर गए, है ना। अप्सरा भाग गई आकाश से, देवता लोग भयभीत हो गए। तो उस बाण के जो अग्रभाग रहता है ना, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप स्थापित किया था, फिर भी सब लोग डर गए, लेकिन सुधन्वा डरा नहीं। तो उन्होंने भी अपना बाण छोड़ दिया और उस बाण से उसको काट लिया, लेकिन उसका जो अग्रभाग था उसमें भगवान कृष्ण ने विश्वरूप स्थापित किया था, तो बाण टूटा हुआ भी आगे का जो अग्रभाग निकल के उसका जो सर है काट लिया। और जैसे ही सर काट लिया तो डरा नहीं, वो हंसता हुआ भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए उनका जो कटा हुआ सर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, वो तो अवसर ढूंढते हैं मृत्यु का, और मृत्यु का भी उपयोग जो है ना भगवान के चरणों में जाने के लिए उसका भी फायदा उठाते हैं, मृत्यु का भी। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो मृत्यु के समय अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है व्यक्ति और देह त्याग करता है, तो वो गोलकधाम में चला जाता है। तो उसी का फायदा उठा के, जैसे कि हरिदास ठाकुर का भी कथा आता है ना, तो हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के सामने उनके मुख कमल को देखते हुए अपना देह त्याग किया था। पितामह भीष्म ने भी भगवान श्री कृष्ण के सामने उनका सुंदर मुख कमल देखते हुए अपना देह त्याग किया था। तो इस तरह हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद में भी वृंदावन में पूरे भक्तों के साथ हरिनाम का गजर होते हुए अपना देह त्याग किया था। तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते, उल्टा क्या करते हैं कि मृत्यु का अवसर जो होता है ना, तो उसका भी फायदा उठाते हैं। वो भयभीत तो होते नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है ना, तो चार नियमों का पालन करता है, गुरु प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहाँ संदेह है कि वो गोलकधाम नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, 16 माला जप करता है, वो निश्चित रूप से गोलकधाम जाएगा प्रभुपाद के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो वो जो ये जो विकार है, वीत राग भय क्रोध, इससे मुक्त होता है। फिर आगे आता है क्रोध। वितराग भयकोर, उससे तीन प्रकार के ये जो विकार बताए हैं ना श्लोक में, तो क्रोध तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक क्रोध, दूसरा राजसिक क्रोध और तीसरा तामसिक क्रोध। तीन प्रकार के क्रोध होते हैं। तो जो सात्विक क्रोध होता है, जैसे कोई पिता है अपने पुत्र के लिए सुधारने के लिए शिक्षा देता है, मारता है उनको, पिता मारता है ना पुत्र को, तो वो कितना मारता है वो कंट्रोल रहता है पूरा, ऐसा नहीं कि बहुत मारता है, जितना सुधारने के लिए आवश्यकता होती है ना उतना ही मारते हैं, मतलब वो पूरा कंट्रोल रहता है, सात्विक क्रोध है ना वो। नहीं तो कोई शिक्षक है, नहीं तो गुरु अपने शिष्य के लिए शिक्षा देते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत क्रोध से देते हैं, है ना, उनका क्रोध बहुत कंट्रोल रहता है और अपने शिष्य को सुधारने के लिए शिक्षा देते हैं, उतना ही शिक्षा देते हैं। तो ऐसा क्रोध जो है ना अच्छा है, और वो क्या है सात्विक क्रोध बोलते हैं उसको। फिर दूसरा आता है राजसिक क्रोध, कामात क्रोध बिजायते, जैसा कि 2.62 में बताया गया है कि काम अगर की पूर्ति नहीं होती तो फिर हमें क्रोध आता है। अगर हमारी भौतिक इच्छा है ना इंद्रिय तृप्ति की, इसमें कोई व्यक्ति अगर बाधा लाता है ना, तो उस व्यक्ति के प्रति नहीं, उस वस्तु के प्रति हमें क्रोध पैदा होता है हमारे हृदय के अंदर। तो उस क्रोध को क्या बोलते हैं राजसिक क्रोध। तो वो भी क्रोध उतना ही होता है जितना उसके इंद्रिय तृप्ति की बाधा दूर हो जाए। कभी कभी वो क्रोध से जो है ना परिणाम थोड़े बहुत होते हैं, जैसे कोई पति आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रही है, मतलब उसका किसी और के साथ संबंध है, तो पति क्या करता है पत्नी की हत्या करता है, कलयुग में हम देखते हैं। नहीं तो ऐसा है कि समझो कोई स्त्री है और किसी दूसरे पुरुष के साथ सहवास कर रही है और उसको पुत्र ने वो देख लिया, तो बाद में उस स्त्री ने क्या किया, उस पुत्र की हत्या कर दी। तो इस प्रकार का क्रोध जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं राजसिक क्रोध, है ना, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करने में वो बाधा आई और जो बाधा आने वाला कोई व्यक्ति है न कोई वस्तु है, तो उसके प्रति जो क्रोध हमारे हृदय में पैदा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं राजसिक क्रोध। तो वो क्रोध अच्छा नहीं है। और तीसरे प्रकार का जो क्रोध होता है वो तामसिक क्रोध। जो राजसिक क्रोध तो काम से पैदा होता है ना, लेकिन ये जो तामसिक क्रोध जो है ना वो अहंकार से पैदा होता है, वो तो बहुत खतरनाक होता है। जैसे कोई आसुरी व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति को बिना किसी कारण उसकी हत्या कर देते हैं। आसुरी जो व्यक्ति होते हैं ना, तो बिना किसी कारण जो अपने से कम बलवान है मेरे से उसकी हत्या कर देते हैं। नहीं तो आतंकवादी जो है ना, वो बम विस्फोट करके निरापराध लोगों की हत्या करेंगे, कोई कारण नहीं है, है ना, अनेक लाखों हजारों लोगों की बम विस्फोट करके हत्या करते हैं। कभी कभी तो हम देखते हैं कि खुद भी मरते हैं बम विस्फोट में और दूसरे को भी मारते हैं, है ना, जैसे कोई हमारे जो राजकारणी लोग है ना, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, तो उनका भी कैसे हत्या हो गया सबको पता है, कि खुद भी मर गए वो और नेता को भी मारा उन्होंने। तो ऐसे प्रकार का जो क्रोध होता है वो क्या है तामसिक क्रोध है। और इसी तामसिक क्रोध के सहारे शिव जी भी प्रलय करते हैं पूरे सृष्टि का। तो ये हमने चर्चा किया कि तीन प्रकार के क्रोध होता है। तो ये तीन प्रकार के क्रोध जो है वो हमारे क्या है विकार है। तो जैसे ही कोई इन विकारों से मुक्त होता है ना, जब श्लोक का जो मतितार्थ क्या है कि एक तो हमें माया की सेवा करना है, नहीं तो हमें क्या करना है भगवान कृष्ण की सेवा कर। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, माया की सेवा करना पड़ेगा। और जैसे ही हम माया की सेवा करेंगे तो हमें शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो बहुत से लोग बहुत प्रयास करते हैं शांति और सुख प्राप्त करने की, लेकिन भौतिक जगत में भौतिक कर्म करते हुए जो व्यक्ति माया की सेवा में लगा है उसे कहाँ शांति और सुख प्राप्त होगा। तो तो उसके लिए तो उसको पूरा रास्ता मोड़ना होगा, माया की सेवा से भगवान कृष्ण की सेवा में लगना होगा, तभी उसको शांति प्राप्त होगी। तो शांति प्राप्त करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में शांति और सुख प्राप्त करने के लिए 2-3 श्लोक में बताया है। तो पहला है, नास्ति बुद्धि रह एकतस्य नचा एकतस्य भावना नचा अभावता वा शांति शांतस्य कुत सुखम। तो जिसकी बुद्धि नास्तिक है, मतलब जो माया की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, नास्ति बुद्धि रे अयुक्तस्य, अयुक्तस्य मतलब भगवान के श्री कृष्ण में जुड़ा नहीं हो, युक्त हुआ नहीं सेवा में, अयुक्त है ना, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ा नहीं, अयुक्त है, जो माया की सेवा कर रहा है। नचा अभावता शांति, उसे शांति कहाँ से मिलेगी और सुख कहाँ से मिलेगा, खुद भगवान की वाणी है ये, तो उसको शांति और सुख प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा एक श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूताना ज्ञातवा मा शांति मृच्छति, इधर भी शांति आया है। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को भोक्ता समझता है यज्ञ और तपस्या का, तो वही व्यक्ति शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। अभी तीसरा भी श्लोक है ना, जो भगवद्गीता का मैं बताऊंगा, तो उसमें ये भी बताया है कि इन 3 विकारों से कैसे मुक्त होना चाहिए। ये जो 3 विकार हमने चर्चा किया, वितराग भय क्रोध, और शांति और सुख भी कैसे प्राप्त होगा, है ना, ये भी बताया है। तो वो क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सयतेन्द्रिय, है ना। तो इस श्लोक में बताया है कि कैसे इन विकारों से हमें मुक्त होना चाहिए। तो हमें पहले श्रद्धा होनी चाहिए, किसके प्रति, हमारे गुरु की वाणी के प्रति, हमारे शास्त्र के प्रति, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत, तो इसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और वो व्यक्ति श्रद्धा के पात्र भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर भी श्रद्धा करो, है ना। तो जैसे कि बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, कर्मकांडी गुरु थे, और जब बलि महाराज दान देने को बैठे और वामनदेव आए, तो शुक्राचार्य बोले दान मत करो, विष्णु है वो, तुम्हारा हर लेंगे। तो उनका भाव क्या था कि बलि महाराज आकर सब कुछ दान देंगे तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे कर्मकांडी गुरु के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए नहीं। तो श्रद्धा कैसे गुरु की होना चाहिए, कैसे गुरु के ऊपर होना चाहिए, हमारे जी इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद है और उनके शिष्य है, तो उन वो जो है सब सन्यासी, तो उनके ऊपर हमारा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, है ना। श्रद्धा किसी के ऊपर भी रखते हैं लोग तो वो फिर क्या होता है, उनका विनाश हो जाता है। तो श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे रामायण में कैकेयी है ना, तो कैकेयी के गुरु कौन है, मंथरा। तो कैकेयी जब मुख्य डिसीजन लेना था उसके जीवन में, तो किस गुरु के पास गई, वो मंथरा के पास गई, और मंथरा से वो सुन रही है, जैसे हम अभी आप सुन रहे हो प्रवचन, गुरु महाराज प्रभुपाद से आप प्रवचन सुनते हो, वैसे कैकेयी किससे सुन रही है प्रवचन, मंत्रा से। तो मंत्रा से प्रवचन सुनने से क्या होगा, श्रद्धा किस व्यक्ति के ऊपर रखा है उसने, गलत गुरु के ऊपर रखा है ना। तो मंत्रा के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो विनाश होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, महामंत्र जपना चाहिए, है ना। मंत्रा के ऊपर श्रद्धा रखेंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा, इससे हमें किसके ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, मंत्रा के विरुद्ध महामंत्र के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, और मणि के ऊपर जप करना चाहिए। तो मणि के ऊपर जो हमारे मणि होते हैं 108 माला के, तो मणि के ऊपर जप करने से हमारा मन भगवान के श्री कृष्ण के ऊपर चरणों में लग जाएगा। तो मणि के ऊपर जप करने से मन हमारा क्या होगा, नियंत्रण में आएगा। और मंत्र के ऊपर श्रद्धा ना करके हमें किसके ऊपर श्रद्धा करना है, महामंत्र के ऊपर। तो थोड़ा ये है ना, मंत्र और महामंत्र, मनी और मन को कंट्रोल, तो इसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना है कि मणि के ऊपर हम जाप करेंगे ना तो क्या होता है, मन कंट्रोल में आता है, नियंत्रण में आता है, और मंत्र का नाश सुन के हमें महामंत्र का जप करना चाहिए। और कहने का क्या तात्पर्य कि हमें सही गुरु के ऊपर हमारा श्रद्धा होना चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम, ऐसा शब्द है। तो तत्पर मतलब हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, उसके प्रति लेने के प्रति हमें तत्पर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो तत्पर का मतलब है कि हमें नित्य भागवतम कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए, मंगल आरती रोज अटेंड करना चाहिए, है ना। तो सेवा, साधना, भक्ति, गुरु के ऊपर श्रद्धा, तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तत्पर। ऐसा कोई शिष्य है जो इसमें तत्पर है, ये नहीं कि भौतिक जो वस्तु है उसके ऊपर तत्पर होते हैं लोग, पैसा कमाने के प्रति, तो उसके प्रति तत्पर होते हैं। कि किसके प्रति हमें तत्पर होना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करने में, आध्यात्मिक ज्ञान देने में। और जैसे ही हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तो हमें प्रश्न भी पूछना चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है ना उसको बोलते हैं तत्पर, तत्पर। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, तो भागवत में हम देखते हैं कि अनेक बार परीक्षित महाराज अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और अपनी शंका का निराकरण करते हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज का जो श्रद्धा था अपने गुरु के प्रति, सुखदेव गोस्वामी के प्रति, कैसा था वो? दृढ़ श्रद्धा था। 7 दिन 7 रात्रि ऐसा श्रवण कर रहे थे अपने गुरु के मुख से, ना तो उनको भूख लगी, है ना, और ना प्यास लगी, है ना। कथा का अमृत बोलते थे कि आप बोलो, है ना। तो ऐसी श्रद्धा गुरु के प्रति जिसकी होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, तत्पर। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी जब भगवद्गीता बताते हैं तो अर्जुन भी ऐसा चुप नहीं बैठता, चुप बैठता है अर्जुन नहीं, नहीं, बीच बीच में प्रश्न पूछता है अर्जुन जो उनके समझ में नहीं आता, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान लेने में तो अर्जुन तत्पर है, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने में परीक्षित महाराज कैसे है, तत्पर है। तो तभी आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, गुरु से हम श्रवण करते हैं ना, तो जो हम श्रवण किया है अगर वो समझ में नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, और फिर आध्यात्मिक ज्ञान पूरा वो मनन करके उसको लेना चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, श्रवण करता है अच्छी तरह से, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर सही में देखा जाए कि तो हमें सबसे इस दुनिया में प्रेम करने वाला व्यक्ति कौन है भौतिक जगत में, कोई कोई किसी किसी को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे से ज़्यादा प्रेम करती है, किसी को लगता है कि मेरे पति प्रेम करते हैं, है ना, कोई मित्र मेरे से प्रेम करता है। लेकिन सही मायने अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ही हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। अगर हमारे कर्म के हिसाब से अगर हमारा दूसरा जन्म कीड़े का भी होता है ना, नहीं तो किसी पशु का होता है, तो भी भगवान श्री कृष्ण हमारे सूर्योदय बनकर हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए हमारे साथ परमात्मा के रूप में आते हैं, उस जन्म में भी आते हैं, कीड़े के जन्म में भी आते हैं, है ना। अगर वो हमारे सूर्योदय और सबसे ज़्यादा मित्र ना होते तो क्या वो आते, हमारे साथ है, हमारे अभी भी हमारे साथ, हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण हमारे मित्र बनकर, हमारे सूर्योदय बनकर, हमारी सभी इच्छा को पूर्ति करते हुए हर जन्म की वो हमारे साथ है, हमारे सच्चे मित्र। तो जो गीता भागवत का जो ज्ञान है उसको हमें जो है ना इस तरह श्रवण करना, जैसे किसी व्यक्ति ने, किसी ने हमको प्रेम पत्र भेजा है। अगर कोई हमें प्रेम पत्र भेजता है तो हम कैसे पढ़ते हैं उसको, एकांत में जाके फिर दो दो तीन तीन बार उस पत्र को पढ़ते हैं, है ना, फिर उसके ऊपर मनन करते कितना प्रेम करता है मेरे से, है ना, फिर थोड़ा हंसते भी है बीच बीच में। तो उस तरह जो भगवान श्री कृष्ण जो हमसे ज़्यादा प्रेम करने वाले प्रेम है उनका प्रेम पत्र है ये गीता भागवत, तो उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, प्रेम से पढ़ना चाहिए, जो समझ में नहीं आया दो तो तीन तीन बार देखना चाहिए पीछे जाके, है ना, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। तो तभी हमें क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। और एक देखिए कि जो जो व्यक्ति भौतिक जन्म दुनिया में जो है ना, प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पे सच्चा प्रेम है ही नहीं भौतिक जगत में, है ना। कोई हमको लगता है कि वो व्यक्ति मेरे से प्रेम करता है, वो प्रेम है क्या? नहीं, राग है वो। राग मतलब सिर्फ आसक्ति है उस व्यक्ति की हमारे साथ। तो अगर हमसे सच्चा प्रेम भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो क्यों ना हम उनसे प्रेम करें। कि दुनिया में अगर जो व्यक्ति कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो उसके साथ अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम क्या है, बेवफा है। और हमसे हमारे साथ कौन प्रेम करता है? सिर्फ भगवान कृष्ण ही प्रेम करते हैं। और वो हमसे प्रेम करते हैं और हम बेवफा है, हर जन्म में हम मुंह मोड़ लेते हैं और माया की सेवा में जुड़े हुए हैं। अगर जब तक हम माया की सेवा करेंगे तब तक हमें शांति और सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो सिंपल शब्दों में प्रभुपाद ने बोला है, चंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो ऐसे ही नहीं बोला, उसके पीछे बहुत बड़ा सार है, चंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो अगर हम भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा और हैप्पी बनेंगे, हमें आनंद की प्राप्ति होगी। चंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ऐसा बोला है प्रभुपाद ने। तो इसके पीछे जो बहुत बड़ा ऐसा सार है कि कैसे हम चंट करने से हैप्पी हो सकते हैं, वो समझ लेना बहुत बड़ी बात है। तो वो शास्त्र से हमें समझ में आएगा कि ऐसे ही सिर्फ वाक्य सुनेंगे चंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, अरे तो प्रभुपाद के अगर इसमें श्रद्धा है, बहुत दृढ़ श्रद्धा है जो प्रभुपाद बोलते हैं, तो फिर हो सकता है बहुत बड़े सैन्य भक्त को वो समझ में आएगा। लेकिन जब तक हम ये श्रवण नहीं करेंगे अशुद्ध भक्तों के मुख से तो हमें ये समझ में नहीं आएगा चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, कैसे हम हैप्पी हो सकते हैं। तो जब एक बार प्रभुपाद वृंदावन में अपने गुरु के साथ गए थे, बहुत पहले की बात है, तो गुरु से प्रवचन सुनते थे। और एक बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ वृंदावन में गए थे कि अगर किसी को वृंदावन की जो मंदिर है, स्थली है, वो देखना है तो जा सकते हैं, और अगर किसी को इधर भी बैठना है, गुरु महाराज का प्रवचन होने वाला है, इधर भी बैठ सकते हैं, ऐसा अनाउंसमेंट हो गया। तो बाद में जब प्रवचन का टाइम आया तो सभी लोग, सभी शिष्य जो थे, वो किधर चले गए, देखने के लिए चले गए वृंदावन में। और एक ही ऐसा शिष्य था वो सामने बैठा था, और वो कौन थे? श्रील प्रभुपाद। तो गुरु के वचनों में जो सुनने के लिए उनमें जो आतुरता थी, अपने श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो श्रद्धा इतनी थी प्रभुपाद के अपने गुरु के ऊपर, तो तभी उनको ज्ञान प्राप्त हो ना। और तत्पर थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्पर थे मतलब वो प्रश्न पूछते थे शास्त्र को, जैसे मैंने बताया उस तरह वो श्रवण करते थे, तभी उनको क्या प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया। वो तत्पर थे। और तत्परम संयते इंद्रिय, ऐसा आगे आया है। संयते इंद्रिय मतलब जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हर हमारे इंद्रिय है ना, ये पांच इंद्रिय है, तो पांच इंद्रियों के पांच विषय है। तो वो विषय अगर हम नियंत्रित करेंगे नहीं तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। जैसे कि एक इंद्रिय है कान, कान का विषय क्या है, श्रवण करना, सुनना। और कान के द्वारा अगर हम भौतिक विषय सुन रहे हैं, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, है ना, तो विषयी वार्तालाप अगर हम सुन रहे हैं तो ये क्या है, हमने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है, नहीं किया। तो उस कान के द्वारा हमें क्या श्रवण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुख से भगवद गीता और भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, उपनिषद, तो इन ग्रंथों के द्वारा जो भी है ज्ञान उसको क्या करना चाहिए, कान के द्वारा श्रवण करना चाहिए। तो इस तरह अगर हम हरे इंद्रिय का भी एक विषय है, आंखों से क्या है, देखना है, तो हमें क्या देखना चाहिए, राधा वृंदावन बिहारी जो है ना, तो उनको देखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्त है उनका देखना चाहिए, है ना। तो जैसे कि आध्यात्मिक स्थान है वृंदावन है, अपना ये भी है गोवर्धन इको विलेज, तो इधर जो भी स्थली है सब क्या है, आध्यात्मिक है, तो आंखों से हम उसको देख सकते हैं। तो ये आंखों का सही उपयोग होगा, मतलब इसको बोलते हैं कि हमारे आंख जो आंख है उसको हमने नियंत्रित किया, इसको बोलते हैं संयत इंद्रिय। तो हर विषय जो है ऐसा है, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे इंद्रिय जो है संयमित हुए ऐसा हम बोल सकते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय, ज्ञान लब्धा पराशांति अचिरेनादि गच्छति। तो जिसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान की तपस्या के द्वारा जो व्यक्ति का शरीर शुद्ध आत्मा शुद्ध हुआ है, तो व्यक्ति शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। तो जो ज्ञान की तपस्या, जो ज्ञान की तपस्या है ना, तीन प्रकार से होती है, काया वाचा मन के द्वारा, WBM। W म्हणजे काय, W म्हणजे वर्ड्स, बी म्हणजे बॉडी, और M मतलब माइंड मन। WBM मतलब ये WBM गाड़ी नहीं है, WBM मतलब सन्यासी का दंडा है। वो सन्यासी होते हैं ना जो हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के, तो उनके पास एक डंडा होता है, पता है मारने के लिए हमको, तो वो डंडे में तीन डंडे होते हैं जो कपड़े से शाफरान वस्त्र से ऐसा ये किया रहता ना, तो तीन जो होते हैं वो काया वाचा मन का प्रतीक है, WBM है वो। तो पहला है हमारा शरीर, तो शरीर से हमें क्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए कि शरीर में क्या है, पांच चीज कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और मन है। तो पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय और फिर मन भी हमारे, हमें क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करने में सफल है तो हमने क्या प्राप्त किया है कि हमारा जो शरीर है भगवान के चरणों में लग गया, पांच कर्म इंद्रिय भी भगवान के चरणों में लग गए, पांच ज्ञान इंद्रिय भी भगवान के चरणों में लग गए। थोड़ा मन को भगवान के चरणों में लगाना कठिन है, तो मन को भी हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए भगवान के चरणों में हमें कैसे लगाना है। तो मन के बारे में भी कैसे नियंत्रण करना चाहिए, इसका भी एक कथा आता है कि एक राजा था और उसके पास एक बकरा था, तो बकरा जो है ना रोज हरी घास खाता था, और राजा थोड़ा टाइम देके रोज आता था बकरे के पास और उसको खिलाता था, तो कितना भी खिलाओ वो बकरा खाता ही था। तो राजा ने देखा कि इसको कितना भी खिलाओ ये खाता ही है ना, इसको मतलब कितना भी खिलाओ रोज वो खाता ही है। तो फिर उसको बोला कि फिर उसने एक दौंडी ये करके राज्य में बोल दिया कि अगर कोई है इस बकरे को घास खिला के अगर कोई तृप्त कर सकता है तो मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो पूरा राज्य में अनाउंसमेंट हो गया, तो बकरे को कैसे अभी संतुष्ट किया जाए, तो फिर अनेक प्रकार के जो लोग हैं ना, तो बकरे को ये करने का प्रयत्न किया, एक ने बकरा लेके गया, दिन भर घास खिलाया, फिर राजा के पास आने के बाद फिर घास राजा देता तो फिर वो खाता है। फिर दूसरे आदमी लेके गए, अनेक प्रकार से प्रयास किया, लेकिन फिर जब बकरा आता था राजा के पास, राजा क्या करता था, हरी घास देता था उसको, फिर वो खाता था बकरा, तो फेल हो गया ना। तो एक आदमी थोड़ा होशियार था, तो उसने क्या किया, बकरा लेके गया राजा के पास से, और दिन भर घास तो खिलाया नहीं, ऐसा घास आगे करता था, अगर घास खाने को मुंह किया तो ऐसा मारता था उसके मुंह पे, बकरे के मुंह पे। दिन भर उसने ऐसा प्रैक्टिस किया कि जैसे ही बकरा आगे आता था ना, उसके मुंह पे छड़ी मारता था ऐसे। तो फिर शाम को राजा के पास लेके गए बकरा, और ये सामने छड़ी लेके खड़ा था बाजू में ऐसा, तो जैसे ही राजा ने उसको घास दिखाया तो उसके आंखों के सामने दूर से उसने छड़ी दिखाया, तो बकरा घास खाने को गया नहीं। तो ये बकरा कौन है, हमारा मन है। ये बकरा कौन है, हमारा मन है। जैसे ही मन के सामने इंद्रियों के विषय आते हैं ना, वो बकरे की तरह मुंह मारता ही है उधर जाके। तो हमें क्या करना चाहिए, तो छड़ी के द्वारा जो है ना उसके मुंह पे मारना चाहिए, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती मानते हैं कि जो मन होता है उसको क्या करना चाहिए, हमें सुबह उठने के बाद 100 बार जूते से और शाम को सोने के पहले 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए, किसको, मन को। तो बकरी की तरह जो मन है जो है ना हमारा कैसा है, खतरनाक है ना ये, तो कितना भी उसको खिला वो खाता खाएगा ये। इंद्रियों के विषय जो है ना वो कभी तृप्त होते क्या हमारे इंद्रियों के विषय, नहीं, कितना भी दो वो और चाहिए। तो उसको नियंत्रित करने का एक ही उपाय क्या है, भगवान के चरणों में लगाने का। जो भौतिक विषय है ना उसको आध्यात्मिक विषय दो, जैसे किसी को आदत है पिक्चर जाने की, देखने की बहुत भक्ति में आने के पहले, तो अभी प्रवचन को आना है उसको, है ना। किसी को बहुत घूमने का आदत है, ये देखो वो देखो, उसको अभी धाम में घूमना है ना, गोवर्धन इको विलेज नहीं तो चार धाम, ऐसे धाम में घूमना है। तो मन को जो पहले जो विषय हम देते थे तो खाली अभी चेंज करना है ना, परिवर्तन करना है उसमें। तो ऐसा हम करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे शरीर की भी तपस्या हो जाएगी, फिर हमारी वाणी की तपस्या क्या है, हमें हमेशा किसके बारे में कथा बोलना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलना है हमारे वाणी से, प्रवचन कीर्तन भगवान श्री कृष्ण की कथा, यही हमारी वाणी के द्वारा अगर हम करेंगे तो वाणी की तपस्या हो गई। और फिर मन का तो हमने अभी चर्चा किया, तो शरीर वाणी और मन अगर ये हम भगवान के चरणों में लगाएंगे, तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ज्ञान की तपस्या है ना, ज्ञान लब्धा पराशांति मोह चिरे नदी गच्छति। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिलने में कहाँ संशय है। जो व्यक्ति श्री प्रभुपाद के संप्रदाय में आया है, गुरु का आश्रय लिया है और चार नियमों का पालन करता है, 16 माला जप करता है, भगवान की सेवा करता है, तो कहाँ संशय है कि वो गोलोक धाम नहीं जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय।